नमस्कार भारत, तारीख 29 जुलाई दिन शुक्रवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। भारत समेत समूचे दक्षिण एशिया में बाढ़ से भारी तबाही, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें, लाखों बेघर, हालात से निपटने के इंतजाम सवालों में।
जो नावों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हर गांव में कम से कम एक नाव, तो नाव जो बड़े लोग हैं, दबंग हैं, उनके कब्जे में है और फिजिकली बहुत कम नावे हैं।
कश्मीर के हालात पर सियासत तेज, महबूबा मुफ्ती का दावा, बुरहान वानी की मौत थी सिर्फ एक इत्तफाक।
जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर।
और सैकड़ों दलित धर्म परिवर्तन की कर रहे हैं तैयारी, खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। दक्षिण एशिया में बारिश और बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत और नेपाल समेत कई देशों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ और जमीन धसकने की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत के बिहार और असम राज्यों में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम में 22 जिलों के 18 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य के 2 लाख से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ड्रग अपराध से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को मृत्यु दंड दे दिया गया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल रूल ड्रैचमेट के मुताबिक फायरिंग दस्ते ने जिन लोगों को मौत की सजा दी, उनमें से 3 नाइजीरिया के और 1 इंडोनेशिया का नागरिक है। सजा पाए कुल 14 लोगों के रिश्तेदारों, विदेशी सरकारों और मानवाधिकार संगठनों ने इंडोनेशिया से उन्हें माफ़ी देने की मांग की थी। अभी ये साफ नहीं है कि बाकी बचे 10 लोगों को माफ़ कर दिया गया है या फिर आने वाले दिनों में उनकी सजा पर अमल होगा। इनमें एक भारतीय भी शामिल है। सीरिया के जिहादी संगठन जबहात अल नुसरा ने अलकायदा से अलग होने का ऐलान किया है। ये संगठन नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि नए संगठन का नाम जबाहत फतेह अल शाम होगा। इसका मतलब है सीरिया फतेह करने के लिए बना फ्रंट। वहीं अमरीका का कहना है कि ये महज संगठन को नई पहचान देने की कोशिश हो सकता है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि संगठन के चरमपंथी आगे भी गठबंधन सेनाओं के निशाने पर रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारे लिए ये यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि उनके काम करने का तरीका या फिर उनके उद्देश्य अलग हैं। वो अब भी एक चरमपंथी संगठन है। वो अब भी ऐसा पक्ष नहीं है जो संघर्ष छोड़ने को तैयार हो, और इसलिए वो गठबंधन सेना के अभियानों के निशाने पर होंगे। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अहम भाषण देने जा रही हैं। अधिवेशन में राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन उनके पक्ष में दलील रख चुके हैं। सर्वेक्षणों के मुताबिक नवंबर में होने वाले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। बात करते हैं आज सबसे पहले भारी बारिश और बाढ़ की, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत पूरे इलाके को अपने चपेट में लिए हुए है। पिछले 4-5 दिनों में नेपाल में 75 से ज्यादा लोगों को बाढ़ और भूस्खलन के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। संपत्ति और फसलों का नुकसान अलग। नेपाल के गृह मंत्रालय का कहना है कि 12 लोग अब तक लापता हैं, जिनको खोजने का काम जारी है। नेपाल में किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है और वहाँ की स्थिति कैसी है, जानने के लिए देर रात हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने बात की बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फुयाल से।
खोजी कार्य जारी है, राहत जारी है। मैंने नेपाल के गृह मंत्रालय के सह प्रवक्ता झंकना थकाल से बात की थी।
उनका कहना है कि राहत और उद्धार के काम चल रहा है। अस्थाई बास का प्रबंध मिलाया गया है, खान पान का भी व्यवस्था किया गया है। फिर भी देश के कई और इलाकों से खबर आ रही है कि बाढ़ और डुबान का समस्या अभी भी जारी है।
ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बाढ़ की भीषण हालत है?
पहाड़ से निकल के वो पहिरो जो है लैंडस्लाइड हुआ, वहां से निकल के अब नीचे साउथ नेपाल में जा रही है और इंडिया भी पहुंच चुका है। नेपाल का पानी सब बह के गंगा में जाती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम पहाड़ में हुआ है। प्युठान जिला है एक पश्चिम नेपाल में, वहां पे एक घटना में 35 लोगों की मौत हो गई लैंडस्लाइड में, पहिरो में। कई एरिया है जहां बाढ़ की वजह से कई आदमी अभी भी लापता है। चारों तरफ नुकसान ही नुकसान पहुंचा है। और नेपाल के मौसम भविष्यवाणी करने वाले अधिकारियों का कहना है कि आज से मानसून और सक्रिय होगी, बरसात होने का संभावना और बढ़ गया है। फिलहाल दक्षिण नेपाल में भारत से सीमा जुड़ी हुई एरिया में इलाकों में कुछ तनाव की खबर आ रही है। जैसे कि कोशी नदी के पास 70 जिला है नेपाल में, भारत में सुपौल जिला है, तो वहाँ 10 गजा नेपाल और भारत का जो सीमा है उससे दक्षिण तरफ भारत के साइड में एक तटबंध निर्माण किया गया था, वो एक नदी के बाढ़ में बह गए। उसके बाद फिर वहाँ तटबंध बनाने की कोशिश की भारतीय पक्षों से, तब वहाँ इस नेपाली साइड के लोगों ने विरोध किया उसका और थोड़ा तनाव भी हुआ, वही खबर आया है। वहाँ हमने थोड़ी देर पहले एक स्थानीय पत्रकार बैद्यनाथ यादव से बात की थी। पत्रकार बैद्यनाथ यादव का कहना है कि दोनों तरफ थोड़ा झड़प भी हुआ और तनाव रहा दिन भर। ये जो बात बन गई है भारत में, वहाँ पे फिर अधिकारी लोग पहुँचे थे दोनों तरफ से, नेपाल और भारत की तरफ से, और उनमें बातचीत करके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। अभी स्थिति रात को शांत हो गया था। फिर ये बाढ़ और डुबान की वजह से चारों तरफ तनाव है नेपाल में, बहुत नुकसान भी पहुंचा है और नेपाल का पानी बहकर भारत जा रही है, उसकी वजह से सीमावर्ती इलाकों में भी कुछ तनाव है।
ये थे काठमांडू से नेपाली सेवा के हमारे साथी सुरेंद्र फुयाल। जैसा कि सुरेंद्र फुयाल बता रहे थे कि भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तनाव है और तनाव की वजह है बाढ़, जिसके कारण बिहार में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या अब 8 से बढ़कर 10 हो गई है, जबकि बाढ़ से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। पूरा ब्यौरा सुनिए पटना से सीटू तिवारी से।
बिहार में अब 10 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, सुपौल के अलावा अब सहरसा और गोपालगंज में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुल 1630 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते तकरीबन 18 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी, खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी, कटिहार के कुर्सेला में कोसी और झावा नदी, पूर्णिया के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने बताया,
पहले कल तक 8 जिले प्रभावित थे, 2 नए जिले जुड़े हैं। सब जगह आबादी निष्क्रमित करके जो बाढ़ में फंसे हुए हैं लोग, उनको बाहर ऊंचे स्थान पर रखकर, व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, अंदर में ही है बांध के, तो उनके लिए नाव से सूखा राशन भी भेजा जा रहा है।
वहीं बाढ़ के चलते मृतकों की संख्या 22 हो गई है, जिस पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो बच्चों और बुजुर्गों को नदियों में नहाने न जाने दें। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का गुरुवार को दौरा किया और बाढ़ राहत के लिए चलाए जा रहे काम की समीक्षा की। बता दें कि बाढ़ से कुल 1,00,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब तक प्रभावित हुआ है।
पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, सुपौल का दौरा हुआ।
ये थे संयुक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार के शब्द। इस बीच जहां राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बड़े स्तर पर राहत कार्य चलाने का दावा किया जा रहा है, वहीं बाढ़ पीड़ितों के बीच काम कर रहे लोग सरकारी तैयारी को नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को पानी से निकालने, राहत शिविरों की व्यवस्था की तैयारियों में खामियां हैं। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र यादव कहते हैं,
आपदा आने के पूर्व में जो तैयारी करनी है उसमें सरकार ने ठीक ढंग से तैयारी नहीं किया है और इसीलिए जो जैसे कोसी तटबंध के अंदर के जो गांव हैं वहां पर जो नावों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हर गांव में कम से कम एक नाव। तो नाव जो बड़े लोग हैं दबंग हैं उनके कब्जे में है और फिजिकली बहुत कम नावें हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए 357 कैंप लगाए गए हैं जिसमें विभाग के मुताबिक 1,36,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इन कैंपों में 100 चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है। आपदा से अब तक 2 जानवरों की मौत हो चुकी है। सरकार ने पशुधन बचाने के लिए भी 38 पशु शिविर लगाए हैं। सीटू तिवारी, BBC पटना।
वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य के 32 में से 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण पिछले 3 दिनों से असम में हालात सुधरने की जगह और बिगड़ गए हैं। कई जगह ब्रह्मपुत्र के तटबंध टूट जाने से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। करीब 2,30,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। गुवाहाटी से सुनिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम में 4 दिन में 3,374 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। इस भीषण बाढ़ की वजह से विभिन्न इलाकों में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ऊपरी असम के कई जिलों के बाद अब निचले असम के धुबरी, बरपेटा, ग्वालपाड़ा, चिरांग, कोकराझाड़ और नलबाड़ी जिले में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इधर बाढ़ के पानी में डूबने से कल बरपेटा में 3 लोगों की मौत हो गई। बरपेटा के जिला उपायुक्त अश्विनी कुमार ने BBC से कहा,
लगभग 4 लाख लोग जो है अफेक्टेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ से, और राहत सामग्री जो है फ्लड रिलीफ के लिए हम रेगुलरली सप्लाई कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं, हमने टीम बनाई है जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब वो रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। जहाँ पे काफी इरोजन हो रहा था वहाँ के लिए टीम बना के हमने प्राइम मिनिस्टर में उसको भिजवा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जो ऊपर से पानी आता अरुणाचल से उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई थी जिसकी वजह से बाढ़ का सिचुएशन बना है यहाँ पे।
राज्य में बाढ़ से उत्पन्न हालातों को ध्यान में रखते हुए कल मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र माजुली सहित आसपास के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने 8 मंत्रियों को बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों की मदद के लिए प्रभावित इलाकों में भेजा है। सीमावर्ती अरुणाचल और भूटान में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों का जलस्तर आज भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लिहाजा अगले 3-4 दिनों तक राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार की उम्मीद दिख नहीं रही। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा का कहना है,
लोअर असम में स्थिति अभी भी गंभीर है, तो अपर असम में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई। हमारी जो सूचना है, सूचना के मुताबिक डिब्रूगढ़ में जो तबाही चली वो पानी अभी आ रहा है, आ गया है धुबरी, तो धुबरी अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। धुबरी, बोरपेटा और बोंगाईगांव के ब्रह्मपुत्र के पास वाले एरिया ये प्रॉब्लमेटिक है। ब्रह्मपुत्र के आस पास वाले जो डिस्ट्रिक्ट है लोअर असम,
इस बीच असम के कई सांसदों ने बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ऐसी चर्चा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही बाढ़ का जायजा लेने असम के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर असम की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत की तरह यहां भी तत्काल 1,000 करोड़ का बाढ़ राहत पैकेज देने की मांग की है।
और ये थे दिलीप शर्मा, गुवाहाटी से रिपोर्ट दे रहे थे। और उधर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी लगभग 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 1/3 लोग कुरीग्राम जिले में बताए जाते हैं। ये जिला असम से लगता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो वहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भारी बारिश और बाढ़ से 22 लोगों की मौत हुई है और बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मौत को लेकर जहां तनाव है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल दावा किया कि पुलिस ऑपरेशन में बुरहान वानी की मौत महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि पुलिस और सेना को ये मालूम नहीं था कि मकान में छिपे चरमपंथियों में से एक बुरहान वानी था। इस पर विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुलिस पर झूठ थोप रही हैं, क्योंकि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि मुख्यमंत्री को बुरहान वानी के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी थी। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
घाटी में कर्फ्यू, बंद और प्रदर्शनों के बीच कल सत्तारूढ़ी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 3 हफ्तों से घाटी में जारी तनाव के बुनियादी कारण बुरहान वानी की मौत के बारे में संवेदनात्मक दावा किया।
जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ एक चांस हो सकता था, मगर चूंकि पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि उनको ये मालूम था वहाँ कोई 3 मिलिटेंट है किसी के घर में, और उनको ये नहीं था कि इसमें कौन है।
पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती का यह दावा रद्द किया है कि इन्हें पुलिस या सेना को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दक्षिणी कश्मीर के एक मकान में छिपे 3 चरमपंथियों में से एक बुरहान वानी है। इनका कहना है कि पुलिस ने बुरहान के मारे जाने के बाद ऑन रिकॉर्ड ये स्पष्ट किया है कि बुरहान का 2 महीने से पीछा चल रहा था, और जब इसे मार गिराने के लिए विशेष पुलिस दल और सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो इस बारे में पहले ही मुख्यमंत्री को सूचित किया गया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने एक वक्तव्य में कहा है कि बुरहान वानी के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था, और इनाम की रकम महबूबा मुफ्ती ने पुलिस और सेना की टीम के लिए अपने खुफिया फंड से रिलीज भी कर दी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस आरोप के जवाब में 3 वर्ष पहले पार्लियामेंट हमले की साजिश के आरोप में फांसी पाने वाले अफजल गुरु का मामला उछाला।
जब अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब को मालूम था, इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही किए थे। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था, हमें तो अचानक पता चला। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि कर्फ्यू लगाया जाए ताकि बच्चे बाहर ना आए।
इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने घाटी में बड़ी सफलता का दावा करते हुए पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर तैयबा के एक चरमपंथी को जिंदा गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सैफुल्ला बहादुर अली नाम के इस चरमपंथी को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की लीपा वैली के रास्ते भारतीय कश्मीर के इलाके में कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म का बदला लेने के लिए भेजा गया। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें बहादुर अली ने माना है कि वो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत का रहने वाला है।
आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग हैदराबाद से दिल्ली में 2 घंटे सफर
गौरतलब है 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पुलिस ऑपरेशन में मृत्यु के बाद घाटी में चले अलगाववादी आंदोलन में फोर्सेस की फायरिंग से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में ऐसे 150 युवा और बच्चे हैं जिनकी आंखों में पैलेट्स या छरे लगे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें 50 से ज्यादा अंधे हो गए हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने पैलेट गन्स के उपयोग की समीक्षा के लिए 7 सदस्यों की टीम बनाई है जो 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
गुजरात के बनासकांठा जिले में सैकड़ों दलितों का कहना है कि वो जल्द ही बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ये लोग पिछले दिनों ऊना तालुका में उन 4 दलितों की पिटाई से नाराज हैं जो मरी हुई गायों की खाल उतारने का काम करते थे। हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने बनासकांठा में दलित संगठन के प्रमुख दलपत भाटिया से पूछा कि कितने दलित परिवार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
अभी 500 दलित परिवार हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
कब कर रहे हैं?
अभी क्या है, हमारा प्रोग्राम ये है कि अभी हम अर्जियां जो अप्लाई है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और 10-15 हजार हमारा 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने के बाद हम एक साथ ही धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे।
तो कब से इसकी आप शुरुआत करने वाले हैं?
हमारा काम शुरू हो गया सर अप्लाई करने का।
तो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ के लोग हैं, किस किस गाँव के लोग हैं और कितने लोग हैं?
पालनपुर, बड़गाम, दिशा, दोतीवाड़ा है, धानेरा है, वाव है, थराद है, बाबर है, दियोदर है, कांकरेज है, लाखनी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के तहसील है, वहाँ से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
अब ये धर्म जब बदलेंगे तो कौन से धर्म में दीक्षा लेना चाहते हैं?
हम बौद्ध धर्म में जाना है, हमारा बाबा का संदेश है।
क्यों कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करने की आखिरकार वजह क्या है?
आजादी मिलने के बाद भी 65 साल हो गए, फिर भी हमें वही गुलामी, वही मार, वही परिस्थिति, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, हमें आजादी का एहसास भी नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसा आप पहले भी कर सकते थे, धर्म परिवर्तन तो पहले भी लोगों के होते रहे हैं, तो अभी ही क्यों?
अभी क्यों हम देख रहे थे कि सरकार कभी कभी कोई हमें इंसाफ देगी, अभी तक सरकार ने कोई इंसाफ नहीं दिया है। दिन प्रतिदिन अमानवीय अत्याचार हो रहे, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो कम होने चाहिए इससे ज्यादा वो बढ़ रहे हैं।
तो आपने अपने अत्याचारों के खिलाफ राज्य सरकार में भी आवाज उठाई है, तो वहाँ से आपको क्या कोई जवाब नहीं मिला है?
नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है। हमें तो सिर्फ ऐसे ही ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कमेटी रची है वो कमेटी कार्यवाही कर रही है। देखो थानगढ़ का 2012 में 3 युवा लड़कों को गोली मार के अभी तक इसका आरोपी जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, और हाल की घटना में भी नहीं मिल रहा है, कहाँ है? इसके बाद भी अभी देखो 2 दिन बाद पुलिस वाला ने एक लड़के को मारा सूरत में।
तो आपको क्या लगता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने से या बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने से आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा?
हाँ, हो जाएगा। कोई हमें बोलने नहीं आएगा ये काम करो ये काम करो, गुलामी हमारी मिट जाएगी। जब गुलामी मिट जाएगी तो ये सुधार भी आ जाएगा।
कुछ संगठन आपसे बात नहीं कर रहे कि भाई क्यों कर रहे हो धर्म परिवर्तन?
नहीं, कोई नहीं कर रहे, सब रोक रहे, आप अच्छा कर रहे हो, कितनी सालों से हम राह देख रहे हैं, कोई हमें साथ दे।
ये थे बनासकांठा के एक दलित संगठन के प्रमुख दलपत भाटिया, जो कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन करना है। उधर अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा और बनासकांठा में दलितों ने मरे हुए पशुओं के शव हटाने से इनकार कर दिया है। इस बीच खबर ये भी है कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में 200 दलितों ने इस्लाम धर्म स्वीकारने की धमकी दी है। बताया जाता है कि ये लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें स्थानीय मंदिर में एक उत्सव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। कल दुनिया भर की नजरें इंडोनेशिया पर टिकी थी, जहां नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए गए 14 लोगों को मौत की सजा दी जानी थी। मौत की सजा रोकने के लिए इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की अपीलों को खारिज कर दिया था, लेकिन कल रात इनमें से सिर्फ 4 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई है। जिन 10 लोगों की सजा पर अभी रोक लगा दी गई है, उनमें भारत के गुरदीप सिंह भी शामिल हैं, जिनका संबंध पंजाब से है। मैंने अमृतसर में अब से कुछ देर पहले बात की वरिष्ठ पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन से और पूछा कि गुरदीप के परिवार का इस पर क्या कहना है।
जी, मेरी बात उनकी पत्नी और उनके भांजे से हुई है, और उनको लेट नाइट मीडिया के थ्रू अभी उन्हें कन्वे हुआ है, जो उनको गोली मार के जैसे वहाँ पे मारा जाता है दोषियों को जो नशे के कारोबार में होते हैं, तो उसको अभी गुरदीप सिंह को नहीं दी गई है। 4 बंदों को गोली मारी गई है उनको जानकारी है, लेकिन उनका फर्दर क्या होगा इसके बारे में उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्हें सुबह विदेश मंत्रालय से जब बात होगी तो ये पता लगेगा उनका फेट है क्या, क्योंकि कुछ मीडिया में ये भी कन्वे है कि उनको जकार्ता ने छोड़ दिया है, और कुछ कहीं पे ये लिखा है कि ये बताया गया है कि नहीं, अभी उनकी जो जिसे वो गोली मारते हैं जिस तरह बंदे को, उसको कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया
है। जाहिरी तौर पर परिवार में अभी भी चिंता है कि क्या होगा उनका भविष्य, लेकिन गुरदीप को जिस तरह इंडोनेशिया में ड्रग्स के कारोबार का दोषी ठहराया गया है, परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
उनका पहले तो वो भारतीय सरकार का शुक्रिया करते हैं कि वो उस केस के लिए भारत सरकार लड़ रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम चूंकि उनके परिवार में से उनके भाई सिर्फ उन्हें एक बार मिल पाए हैं इंडोनेशिया में, और उनको ऐसा लगता है कि उनको फंसाया गया है किसी और जो बंदे के द्वारा, और उन्हें नहीं मालूम कि वहां पे उनके साथ क्या हो रहा है। वो भारत सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह गुरदीप सिंह को बचा कर भारत वापस लाया जाए।
ये थे अमृतसर से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह रॉबिन। तो आज नजरें रहेंगी भारत के विदेश मंत्रालय पर कि उसकी तरफ से गुरदीप सिंह के बारे में क्या कुछ बयान आता है। और इसके बाद अब बारी अखबारों की समीक्षा की। वात्सल्य राय हमारे साथ हाजिर हैं स्टूडियो में, क्या कह रहे हैं जी आज के अखबार?
जी अशोक जी, सबसे पहले बात करना चाहूँगा एक ऐसी खबर की जो यूपी के मैनपुरी ज़िले से जुड़ी हुई है, जहाँ महज 15 रुपये के कर्ज के लिए एक दलित दंपति की हत्या कर दी गई।
अच्छा, ये तो नया मामला लग
जी
रहा है।
बिल्कुल नया मामला है, और बिस्कुट खरीदे थे इस दलित दंपति ने कुछ दिन पहले, पुलिस के हवाले से बताया है अखबारों ने। द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, सारे अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर जगह दी है। 15 रुपये के बिस्कुट खरीदने का मामला था जिसके एवज में इनकी हत्या कर दी गई, और ये जो जगह है वो जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश यादव, उनके गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर दूर का ये मामला है। अमर उजाला ने
पहले ही दलितों का काफी मुद्दा उछल रहा है सियासत में, वहाँ की अब नया मुद्दा आया।
अमर उजाला ने बताया कि सरकार ने ये घटना सामने आने के बाद परिजनों को 5 लाख रुपए दिए हैं। इसके बाद मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, लोकसभा में कल महंगाई के मुद्दे पर बहुत जोरदार बहस हुई थी।
राहुल गांधी के बयान की खूब चर्चा हो रही है सब
जी। उन्होंने जो लोकसभा का हिट नारा था हर हर मोदी, उसके तर्ज पर एक नारा जो चल रहा है हर मोदी। दाल की कीमतों के बारे में बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब अपना जवाब दिया तो ये बताया कि उनको विरासत में महंगाई मिली थी जिसको उन्होंने काबू किया है। हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक,
हालांकि अब तो 2 साल हो गए सरकार को, अब विरासत वाली बात कहां तक चलेगी ये देखनी होगी,
लेकिन वो विरासत अभी आगे चल रही है। महंगाई के मुद्दे पर बहस जारी है, लेकिन जीएसटी से जुड़ी एक खबर है कि इस सत्र में सरकार चाहती है कि जीएसटी से जुड़ा जो विधेयक बहुत दिनों से लंबित है उस पर आम सहमति बने। इसके लिए वित्त मंत्री ने मुलाकात की कल कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से। इसके अलावा एक खबर जो कश्मीर घाटी में सेना ने एक चरमपंथी को पकड़ा था उसके हवाले से तमाम अखबारों ने खबरें छापी हैं। पहले पन्ने पर खबरें हैं जिसमें उसके हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसे भेजा था और दूसरे चरमपंथियों को भेजा था। इसके साथ एक खबर यह है कि राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं सार्क की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे जो पाकिस्तान में 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होनी है। मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी का कल निधन हो गया, इस खबर को भी पहले पन्नों पर अखबारों ने जगह दी है। डोपिंग एजेंसी के रिकॉर्ड के हवाले से भी बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि 687 एथलीट 2009 से पकड़े गए हैं। एक आखिरी खबर मैं चलते चलते बताना चाहूँगा, हरभजन सिंह एक बेटी के पिता बने हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। और अब हम चलते हैं खेलों की तरफ, रजत चांदना लेकर आए हैं तमाम जानकारी।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रजत चांदना। डोपिंग के दोषी पहलवान नरसिंह यादव की किस्मत का फैसला शनिवार या सोमवार को हो जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा नरसिंह यादव के मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। नाडा इस मामले में शनिवार या सोमवार को फैसला सुनाएगी। नाडा ने इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई की थी। नरसिंह दूसरे डोप टेस्ट में भी फेल हो चुके हैं, ऐसे में उनके रियो जाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। नाडा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान किसी तरह की लापरवाही या नरसिंह के खाने में मिलावट की बात साबित नहीं हो पाई। नाडा ने तर्क रखा कि टॉप एथलीटों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। माना जा रहा है कि अब नरसिंह यादव पर बैन लगना लगभग तय है, उन पर 2 से 4 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। यही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस बीच प्रवीण राणा को रियो में नरसिंह की जगह भेजने का फैसला किया है ताकि ओलंपिक की 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का कोटा बचा रहे। वही भारतीय टीम शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अभ्यास में जुट गई है। पहले मैच में 1 पारी और 92 रन से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी अच्छा है, लेकिन भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने बताया कि टीम पहले मैच की जीत के बाद अब जमैका के मैच की तैयारी के लिए जुट गई है।
बहुत अच्छी बात है कि लास्ट टेस्ट मैच हम जीते, सबने कलेक्टिव एफर्ट था, बॉलिंग अच्छी करी हमने, बैटिंग अच्छी करी और फिर साथ में फील्डिंग में अच्छे कैचेस पकड़े, सबका पूरा कलेक्टिव एफर्ट था। और मुझे लगता है कि हम वो चीज़ भूल के अब अगले वाला जो मैच हमारा जमैका में जो मैच है उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि एक मैच लेके चलें साथ में, जो हो गया वो अच्छी बात है बट उसको भूल के आगे वाले मैचों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे कि हमें जो आने वाले दो दिन बाद जो मैच है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और यहाँ के जो वेदर है उससे हम फ्रेंडली हो जाएं और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएं।
उधर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ शनिवार को शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 2016 अंडर 19 विश्व कप में टीम के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले अलजारी जोसेफ को टीम में शामिल किया है। अलजारी ने कैरिबियाई टीम के लिए बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप में 13 विकेट लिए थे। वहीं वेस्ट इंडीज दौरे पे गई टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अगस्त में T20 मैचों की सीरीज भी खेल सकती है। टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद अगस्त में अमेरिका के फ्लोरिडा में दोनों देशों के बीच T20 मैचों की सीरीज कराई जाने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच T20 मैचों की सीरीज के लिए बातचीत जारी है।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दक्षिण एशिया में बारिश और बाढ़ की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत और नेपाल समेत कई देशों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ड्रग अपराध से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को आज तड़के मृत्युदंड दे दिया गया। सीरिया के जिहादी संगठन जबहात अल नुसरा ने अलकायदा से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अहम भाषण देने जा रही हैं। BBC समाचार।
और इसी के साथ नमस्कार भारत का समय हुआ पूरा। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात होनी है ठीक एक घंटे बाद, कार्यक्रम होगा विश्व भारती। फिलहाल अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।